आज बाबा की मुरली में बहुत अच्छी बात थी, दोनों बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं। किस किस चीज से? अब हम सोचेंगे, हाँ, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। सर्व गुण अगर हमारे जीवन में आते जाते हैं तो हम बहुत श्रृंगारे हुए रहते हैं ना। सबसे अच्छा श्रृंगार गुणों का श्रृंगार ही है। और संडे की मुरली में बाबा ने शुरू में ही हमें चार बहुत अच्छे स्वमान दिए थे। तुम हो विश्व कल्याणकारी, आधारमूर्त, उद्धारमूर्त, विश्व परिवर्तक। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त दोनों ही बहुत बड़ी बातें हैं। आधार अर्थात जैसी स्थिति हमारी होगी वैसी ही स्थिति संसार की होगी। विचार करने योग्य बात है, ये छोटी सी बात नहीं। प्रकृति की भी वैसी स्थिति होगी, संसार की भी वैसी स्थिति होगी जैसी हमारी होगी। इतने महान हैं हम सभी, हैं या नहीं? कुमार क्या समझते हैं? क्या छोटे से हम तो सिलाई करते हैं, हम तो सिक्योरिटी में हैं, छोटे से हैं, माताएं? इतनी महानता की नजर से बाबा हमें देखता है। उद्धार और भी बड़ी बात, संसार के उद्धार करने वाले भी कौन है? आवाज निकली नहीं है, है पक्का? सभी कहता है बाबा। हमारी कौन सी स्थिति सबका उद्धार करेगी? उद्धार करने का अर्थ है सिंपल अर्थ, सबको मुक्ति धाम ले जाना, उसका रास्ता भी दिखाना और ले भी जाना। बाबा ले जाएगा, हम भी साथ ले जाने वाले होंगे। कैसी स्थिति? हमारी मुक्त अवस्था, यहाँ मुक्त। इसका विस्तार बहुत अच्छा किया जा सकता है। हमारी मुक्त अवस्था विश्व के उद्धार करने वाली अवस्था होगी। हमारी संपूर्ण प्योर अवस्था विश्व का उद्धार करेगी। हमारी संपूर्ण योगयुक्त अवस्था विश्व का उद्धार करने के निमित्त बनेगी, क्योंकि बहुत बड़े सीन अभी संगम युग के आने बाकी हैं। ये रहस्य क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिकल रूप से क्लियर होंगे, कहने और सुनने और ज्ञान की दृष्टि से नहीं। जब आत्माएं जिन्होंने ये सब स्थिति बनाई होंगी, संसार का यही उद्धार करने लगेंगी, अनेक आत्माओं का उद्धार करने लगेंगी। आज हम एक विशेष बात पे चिंतन करेंगे, सब चिंतन करेंगे। बुद्धिमान वो है, उत्तर दो, कई उत्तर हो सकते हैं इसके, जो पॉजिटिव हो, जो व्यर्थ संकल्पों से स्वयं को मुक्त रखे। और बोलो, जो मन को कहीं भी उलझाए नहीं, और जो अपनी स्थिति निर्विघ्न बनाए। बहुत अच्छे उत्तर है, बहनों का नंबर है। देवी अभिमानी रहे। और बोलो, कोच वाली माताएं, सेकेंड में फुल स्टॉप लगाया आपने, तो बड़ी पावरफुल बात बता दी। तो मैं हम आज इस पे ही चर्चा करेंगे। बुद्धिमान वो जो अपने चित्त को शांत रखे, क्योंकि सेकंड में फुल स्टॉप अचानक नहीं लग सकता। मन शांत रहता हो, वो ज्ञान से भरपूर रहता हो, वो अच्छे स्वमान में रहता हो, बुद्धि को हम फुल रखते हो, तब चित्त को हम जल्दी से जल्दी शांत कर सकते हैं। मैं एक बात फिर आप सबको याद दिलाऊंगा, रोज जब भी यहाँ आएंगे आपको याद दिलाएंगे। वो बात दूसरों के अनुभवों से मुझे याद आती है रोज। बहुतों को ये कड़वा अनुभव हो रहा है कि व्यर्थ संकल्प बिना मतलब ही ज्यादा चल रहे हैं, कारण नहीं कोई। बहुतों को ये हो रहा है कि एक व्यर्थ संकल्प आ गया तो उसको रोका नहीं जा सकता, इतनी लाइन लगती है कि बस उसके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। इसलिए हमें सावधान होना है। मैं आज दूसरा शब्द यूज करूंगा, बाबा व्यक्त बाबा, बहुत पहले जिसका इशारा दे आए थे, धर्मराज का पाठ प्रारंभ हो रहा है धीरे धीरे। एक दो साल में गति तेज हो जाएगी इसकी, क्योंकि मानसिक सजाएं इतनी ज्यादा बुरी होती हैं कि मनुष्य शरीर के कर्म भोग को तो आराम से पार कर लेता है, लेकिन मन परेशान हो गया हो, मन अशांत हो गया हो, उसको पार करना बहुत सहज काम नहीं होता। इसलिए सब सावधान होंगे कि हम व्यर्थ को बढ़ावा ना दें। कैसे मनुष्य व्यर्थ को बढ़ावा देता है? व्यर्थ सुनने सुनाने में रुचि, इम्पोर्टेंट बात। अगर हम व्यर्थ सुनने सुनाने से अपने को मुक्त कर लें तो बहुत सारी चीजें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी, आधा व्यर्थ खत्म। क्योंकि जब हम व्यर्थ सुनने सुनाने में रहते हैं तो हम उसका आनंद तो बहुत लेते हैं, परंतु हम अपने मन को और मस्तिष्क को कमजोर करते हैं, और ये दोनों जब कमजोर हो जाते हैं तो आने वाली परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। परिस्थिति आती है, रोज आती है, बाबा ने तो कहा हुआ है। याद दिला दूं मैं आपको, बात तो खराब है पर हमें उसके लिए अपने को तैयार तो करना ही पड़ेगा। अब के तुम्हारे दुख तो चीटी के समान है, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। ये भी घन जिससे तुम घबरा रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, सारा संसार विघ्नों की चपेट में आ जाएगा। जहाँ संसार में भय फैलेगा, जब विश्व युद्ध प्रारंभ होगा तो उसका इफेक्ट सारे संसार पर ये बहुत बुरा होगा, भय, सब जगह भय होगा। क्या होगा, कहीं ये न हो जाए। हमारे भी तो लोग बहुत रहते हैं वहाँ, अमेरिका में, लंदन में, रशिया में, जापान में, पता नहीं क्या होगा। और लोगों को ये महसूस होगा कि धन संपदा किसी के काम नहीं आ रही है। क्या क्या काम आएगा बोलो, गुनाह बिनाह, चार पांच चीजें क्या काम आएगा मनुष्य को, हम सबको, विपदाओं के समय, विनाश के समय, महाभारत के समय। पहला पहला होगा योग बल, दूसरा काम आएगा बाबा, अब सोचना है बाबा किसको काम आएगा। कल मुरली थी, याद है ना, रक्षा करता हूँ मैं। विचार करना है इन बातों पर। कईयों को ये अनुभव होता है कि बाबा मदद नहीं करता, साफ साफ है ये बात। बहुत कहते हैं हमने तो ये किया वो किया, कई कई इतना ही कहते हैं, हमने तो बाबा को कई बार कहा, बाबा सुनता ही नहीं। मैंने कहा सारा संसार कहता है बाबा को रोज, न जाने क्या क्या कहते हैं, उसको दोष भी देते हैं, पड़ोसियों को भी दोष देते हैं, लेकिन बाबा किसकी सुनेगा और किसकी रक्षा करेगा, ये बहुत सोचने की बात है। अगर हमें उसकी मदद नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं गलती उसकी नहीं, हमारी है। तो काम आएगी हमारी श्रेष्ठ स्थिति, योग युग की स्थिति, काम आएगा बाबा, काम आएगी प्योरिटी बहुत ज्यादा, ये बड़ा सूक्ष्म स्वरूप होगा। प्योर वाइब्रेशन मनुष्य को अनेक आपदाओं से मुक्त रखेंगे और काम आएंगे हमारे पुण्य कर्म। कोई किसी को साथ नहीं देगा, पुण्य कर्म हमारे सच्चे फ्रेंड बनकर हमारा साथ देंगे। पुण्य कर्म क्या है वो आप सब जानते हैं अच्छी तरह। यज्ञ सेवा जिसमें आप आए हैं, लेकिन दूसरों को सुख देना, दूसरों को सहयोग करना, दूसरों के लिए श्रेष्ठ भावना रखना। अगर सेवा तो बहुत अच्छी करते हो लेकिन कमरे में जाके लड़ाई कर लेते हो, कोई करता हो तो सोच लेना, तो उसकी सेवाओं का बल साथ साथ समाप्त हो जाता है। सेवाएं यदि निष्काम भाव से नहीं है, साथ साथ ही कामना है बहुत सारी, तो सेवाओं का फल और बल आधा रह जाता है। जैसे बाबा ने कहा एक बार, आप सब याद करें इस महावाक्य को, चाहे कोई रात दिन सेवा करे, सब को लगा दे, परंतु यदि निमित्त भाव, बोलो आगे, निर्माण भाव, निर्मल वाणी नहीं है, तो केवल 5% ही जमा होता है। तो कोई बहुत सेवा करे और फिर सोचे हमें बाबा की मदद नहीं मिलती, तो न मिलने का कारण ये है तीनों। निमित्त भाव नहीं, अहम भाव है। जैसे किसी को अहम हो मैं इंचार्ज हूँ, ये बात अगर मैं ओपनली बोलूं तो मैं देख देख के कहीं कहीं बहुत हंसता हूँ। छोटी बहन, एक छोटा सा उपसेवा केंद्र उसे दे दिया गया, इंचार्ज बना दिया गया। इंचार्ज बनते ही बता दे, मैं नहीं बोलूंगा, अपना श्रृंगार बिगाड़ लिया और बस, मैं मेरी श्रीमत के बिना पत्ता भी हिलना नहीं चाहिए, तो दिव्यता तो जीवन में नहीं आएगी ना। जो अपनी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, अधिकार उनका सारा भाग्य छीन लेते हैं, और जो अपने छोटे भी अधिकार से सबको सुख देते हैं, वो महान बन जाते हैं। चाहे आपको झाड़ू लगाने की सेवा है, छोटी सेवा है, लेकिन आप इतना अच्छा लगा दें कि बैठने वाले सुखी हो जाएं, खुश हो जाएं, उसका पुण्य कहीं ज्यादा है। मुकाबले इसके आपने बहुत अच्छा भाषण किया हो और आपका अहम बढ़ गया हो, तो हम थोड़े में चर्चा करेंगे। हमें अपने चित्त को शांत रखना है। बाबा की मुरलियों में तीन बिंदु लगाओ, याद है, पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा। अब ये तीनों बिंदु वैसे तो हैं, इनको लगाएं कैसे, ऐसा तो नहीं ना पेन ले ले और बिंदु लगा दिया और संकल्प शांत हो जाएंगे। बात बहुत गुह्य है, तो सबसे पहले हमें अभ्यास करना चाहिए बार बार ऐसा रिवी होने का। क्या फायदा होगा इससे, बोलो क्या फायदा होगा? नहीं और कुछ बोलो। संकल्प धीमे हो जाएंगे, निराकारी स्थिति बनती जाएगी और निराकारी स्थिति में सभी संकल्प समाने लगेंगे श्याम। इसलिए ऐसे नहीं बस सवेरे योग किया तो एक बार याद कर लिया था मैं आत्मा हूँ और फिर शाम को याद आया जब योग में बैठे मैं आत्मा हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। इसकी बहुत गहरी साधना करनी पड़ेगी। ये देह अलग मैं अलग, बिल्कुल बाबा के माँ बाप याद कर लो। ब्रह्मा बाबा लास्ट दिनों में कहते थे मैं इस देह में ऐसे रहता हूँ जैसे इसमें हूँ ही नहीं, यह शरीरीपन। बिल्कुल ऐसे रहते थे जैसे है ही नहीं, इसका लिया हुआ आधार जैसे शिव बाबा ने लिया मैंने भी आधार ही लिया है, बस छूटा ये, ऐसी गुड फीलिंग। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, ये प्रैक्टिस। साथ में अपने स्वमानों की प्रैक्टिस, मैं कौन हूँ। मैं एक बार पिछली बार भी कही होगी, रोज अपने को एक बार अवश्य याद दिलाएंगे सभी। हाँ इससे पहले मेरा जन्म महान कार्यों के लिए ही हुआ है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे विश्व का उद्धार करना है, मेरी स्थिति सृष्टि की स्थिति बनती है, मैं पूर्वज हूँ, महान कार्य मुझे करने हैं, संसार को दुखों से मुक्त करना है मुझे, ये अपना चिंतन रोज एक बार अवश्य हो जाए। ये चिंतन हमारी स्थिति को महान बनाता है और यही चिंतन छोटे विचारों से हमें मुक्त करता है। छोटे विचार जीवन के लिए बहुत घातक होते हैं, उनसे ऊपर उठने के लिए हमें ये स्वमान के विचार बहुत ज्यादा करने चाहिए। तो जितना जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, आत्मा होने का, अगर मैं ऐसे कहूँ कि हम देह बन गए थे ना, देवान न कहो, हम देह हो गए थे ना, अब हम आत्मा हो जाएंगे, तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रैक्टिस एक अनुभव कल आप करके देखेंगे एक दिन के लिए, आपको अच्छा लगे तो उसको आगे बढ़ाना। हर घंटे में एक बार जो भी आमने सामने हो, ये सब आत्माएं हैं, देव कुल की बहुत महान आत्माएं हैं, इस दृष्टि और दृष्टिकोण से सबको देख लेना घंटे में एक बार बस। तो देखना शाम तक मन कितना शांत होता है, क्योंकि हमारी एक दृष्टि हमें बाह्यमुखी बनाती है और इससे मन का विस्तार हो जाता है। फिर हम न जाने क्या क्या सोचेंगे, ये जरूर नहीं हम देह के लिए सोच रहे हो, पर कुछ भी सोचते रहेंगे हम, इसका उसका तेरा मेरा पर चिंतन जिसकी जरूरत नहीं है। इसलिए यदि आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कर लिया जाए तो मन काफी शांत हो जाता है। अब दूसरा बिंदु है बाबा, वैसे तो वो बिंदु है लेकिन बिंदु का अर्थ नहीं, वो छोटा सा है बस, छोटा सा है तो आगे बोलो आगे। जितनी फिजिक्स में पढ़ाया जाता था, हम लोगों ने ग्यारहवीं से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, जो चीज जितनी सूक्ष्म है वो उतनी ही पावरफुल है। छोटी क्लासेज में एक प्रश्न आया करता था कि मकानों के ऊपर जो ऊंचे मकान होते हैं एरियल लगाया जाता है ना, वो बहुत नोकीला, बहुत पतला, पतले से पतला तार, तो क्यों मोटा लगाना चाहिए ना? लगाते इसलिए कि ऊपर से बिजली कड़क के गिरे तो उस तार में समा के जमीन में चली जाए। तो प्रश्न होता था कि तार मोटा होना चाहिए ना, बिजली बहुत गिरेगी और तो जल जाएगा पतला सा तार। लेकिन नहीं, जितना तार पतला होगा अधिकतम बिजली उसमें समा के धरती में चली जाएगी। तो बाबा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, इसलिए वो सर्वशक्तिवान है। अब बाबा बिंदु से कैसे हम अपने मन को शांत करेंगे? नहीं, पहले तो अगर हम बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को लगाएंगे तो जैसे आत्म की स्थिति से मन शांत हो जाता है, वैसे बाबा के स्वरूप पर बुद्धि लगाने से चित्त आनंद से भर जाता है। जिसको आप में से अनुभव है कि बीज रूप का थोड़ा समय भी, एक एक दो दो मिनट भी, तो मन आनंद से भरता है, मन में बहुत आनंद होता है। और जब मन आनंदित होता है तो शांत हो जाता है। जैसे भोजन खा के हम आनंदित हों फिर और कुछ खाने की इच्छा नहीं रहेगी। याद से ऐसे ही मन आनंदित होता है। लेकिन अब और आगे चलें, बाबा से कैसे हम अपने मन को शांत करेंगे? मैं एक पॉइंट सुनाता हूँ, तीन चार पांच आप नोट कर सकते हैं स्वयं चिंतन करके। बाबा ने कहा, सारे फिकर मुझे देकर अकुल ले लो और क्या बन जाओ? बेफिक्र बादशाह। सोचो विभिन्न परिस्थितियों में, समस्याओं में निश्चिंत रहने का, निर्संकल्प रहने का ये कितना सुंदर तरीका है। बाबा है, बाबा हमारे साथ है। कोई बड़ा मिनिस्टर आपके साथ हो, साथ ही नहीं होता, वो आपके साथ रहता है, साथ है वो। तो जीवन में कुछ भी आएगा तो फलाना बड़ा आदमी हमारे साथ है, उसकी हमें मदद मिलेगी, कई काम सरल हो जाएंगे। भगवान हमारे साथ है, ये स्मृति हमें निश्चिंत करेगी और निसंकल्प करेगी। लेकिन इसका बहुत गहरा नशा होना चाहिए। बाबा साथ है इसका कहने वो नीचे ही हमारे साथ है, नशा आ जाए हमारे पीछे भगवान है, वो हमारी छत्र छाया है और हम बाबा को पहचानते चले। इसलिए बात पर आप चिंतन करना, बाबा को सबने पहचाना नहीं है। घर घर में चित्र लगा दिए हैं, मैं बैठा हूँ तुम चिंता न करो, उसको पढ़ते भी रहते हैं और चिंता भी करते रहते हैं, दोनों काम चलते रहते हैं। फिर पढ़ेंगे, बाबा कह रहा मैं बैठा हूँ चिंता ना करो, फिर चिंता शुरू हो जाएगी। माता जी सुनाते हैं अपना ये अनुभव कि ये जो बाबा की बात है ये काम नहीं कर रही हमारे साथ। चित्र को देख के हमें खुशी तो होती है कि बाबा बैठा है हमारे घर में, पर कुछ हो तो नहीं रहा। तो इसको हमें अपने नशे में लाना है। भगवान हमारा साथी है और सर्वशक्तिवान साथी होने के बाद कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, ये पूरा विश्वास हो जाए। एक कन्या भी मुझे फोन कर रही शाम को, मेरे को ये बीमारी है परंतु मुझे बचपन से ही किसी भी चीज पे विश्वास ही नहीं होता, दवाई डॉक्टर देते, मुझे विश्वास ही नहीं होता इससे ठीक हो जाएगी, ओवरी में गांठ है। तो दवाई दी जा रही है तो कहती मुझे विश्वास ही नहीं होता कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने कहा बस तुम मान लोगे तुम कभी ठीक नहीं होगी। फिर हंसने लगी कि नहीं मैं ठीक होना चाहती हूँ ना, अब 2 साल से ज्ञान में आई हूँ। मैंने कहा विश्वास होता है, मेरे में विश्वास है कि मैं जो तुम्हें कहूँगा तुम ठीक हो जाओगी, करूँगी कोशिश। मैंने कहा ठीक नहीं होगी तो फिर कहा मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगी, बहुत साल में ठीक नहीं हुई है, बचपन से ही थी ये तकलीफ। तो मैंने कहा अगर विश्वास नहीं होगा तो 2 साल लगेंगे ठीक होने में, और अगर विश्वास करोगी तो 3 मास में हो जाएगा, तो मैं करूंगी। मैंने कहा मेरे कहने से नहीं, ये तुम्हारे अंदर से उठनी चाहिए आवाज कि बाबा है, ऐसे ही ये बात है, बाबा है, उसके होते हुए हमारा कुछ भी ये कल्याण हो नहीं सकता। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं, जब से बाबा के बने हम कठिनाइयों में आ गए, बाबा हमारी नहीं सुनता। क्या कारण? बहुत सारी बातों को अपनाते नहीं हैं। केवल बाबा के बन गए इससे काम थोड़ा ही चलेगा, पुण्य कर्म भी साथ होने चाहिए, सच्चाई भी साथ होनी चाहिए, जो बाबा की मुख्य आज्ञाएं हैं उनका भी तो पालन करना चाहिए। एक माता मिली मुझे 20 साल से ज्ञान में हूँ, मेरी खान पान की शुद्धि नहीं है, अभी ज्ञान सरोवर में शाम को 20 साल से क्या किया, फिर क्या करूँ, ज्वाइंट फैमिली है, सब नॉन वेज खाते हैं, अब मैं अपना कहाँ से बनाऊ, मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, क्या है इसके पीछे, अपनी कमजोरी, अपनी ढिलाई, अरे मैं कैसे बनाऊंगी, चलो तुम्हारा ही खा लेती हूँ, कोई बात नहीं। बहुत बड़ी ढिलाई है ये, अगर मनुष्य ये बहुत बुरी नहीं है, वो 65 साल की होगी। मैंने कहा तुम अभी से बूढ़ी अपने को कह रहे हो, 20 साल हो गए, तब तो और भी कम आयु हो गई ना, अब से 20 कम, तब से यही सोचती आ रही मैं अपना भोजन कैसे बनाऊं, ये कमजोरी। और फिर कहें बाबा मदद नहीं करता, चलेगा काम? इसलिए बाबा को पूरी तरह जानना, अपने को बहुत अच्छा बनाना, भगवान का दिल तो जीते कि वो दौड़ा चलाए, अगर भक्तों के पुकार पर वो दौड़ा आ सकता है नंगे पैर, तो अपने बच्चों के बुलावे पे नहीं आएगा, पर बुलाने वाले भी तो कुछ हो ना, हमें विचार करना है। इसलिए बाबा को सारी चिंताएं देकर उससे फकुर ले लो, फकुर माना नशा, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, कौन मेरी छत्र छाया बनकर रहता है। बाबा के हजारों बच्चों को उसके साथ के सुंदर अनुभव भी होते हैं, रोज रोज होते हैं, किसे होते हैं और किसे नहीं होते, ये विचार करने की बात है। भगवान के पास कोई पार्शियलिटी नहीं है, इसको करूं और इसको न करूं, ये उसके पास नहीं है, उसकी मदद के वाइब्रेशंस तो सबको आ रहे हैं, कोई लेता है कोई नहीं लेता। तीसरा ड्रामा, अब ड्रामा के ज्ञान से बिंदु कैसे लगाएं? आजकल माताओं की सबसे बड़ी समस्या चल रही है कौन सी, माताएं बता सकती हैं? भाई तो बोल रहे, पर हम माताओं से पूछना चाहते हैं, बोलो, बच्चों की कैसी? देखो समस्याएं भी प्रैक्टिकल हैं और ठीक भी हैं। मेरा बच्चा है ठीक से पढ़ता नहीं, तो जैसे बच्चे की बहुत स्थिति बिगड़ रही है, माँ ने अपनी और ज्यादा बिगाड़ ली। बाबा हमें मदद क्यों नहीं करता, मैं तो 10 साल से ज्ञान में हूँ, मेरे इस बच्चे को बाबा ठीक क्यों नहीं करता, ये पढ़ना ही नहीं चाहता। बाबा पढ़ाने आए उसे, रोज तो आता है, पढ़ने जाते नहीं, क्या करे बाबा इसमें, बोलो। और माताओं को क्या करना चाहिए, सबसे सभी माताएं बैठी हैं। अपनी स्थिति यदि बिगाड़ ली तो बच्चे की स्थिति और बिगड़ेगी। माताएं सुन ले ध्यान से जो यहाँ बैठी हैं, क्योंकि माँ से उसके सारे बच्चे बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। आपका हर वाइब्रेशन बच्चे को प्रभावित करेगा। आप परेशान हो रही कि बच्चा पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं, घर में रहता है, टीवी देखता है, मोबाइल पे लगा रहता है गेम खेलने में, ये उसका काम है, पढ़ना नहीं। तो बहुत बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं होती ना, जैसे हमारे यहाँ भी हैं बहुत आत्माओं में पढ़ने की रुचि नहीं। भगवान परम धाम से आए या उससे भी दूर से आए, हम तो अपने कमरे में रहेंगे, नहीं होती ना बहुतों में रुचि। और बहुतों में रुचि होती है, बहुत गहरा ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान की गुह्यता को जानकर, तो छोटी बात नहीं है, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, उससे हमारी विवेक शक्ति बढ़ती है, इन्हीं मूल्यों से हमारी बुद्धि का निर्माण हो रहा है, जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। फिर भी कईयों को मूल्य आदि में रस नहीं होता है, तो माताओं को सोचना चाहिए कि बच्चों की अगर ऐसी मनोस्थिति हो गई है तो योगदान करें, अपने घर के माहौल को योगयुक्त बनाएं, परेशानी वाला नहीं, परेशानी वाला वातावरण बच्चों में और गिरावट लाता है, ये ध्यान देते हुए। इसलिए मैं माताओं को बहुत कहता हूँ, कुछ माताएं कर लेती हैं अपने घर में 20-20-20 मिनट 3 बार योग अवश्य कर लो दिन में। देखिए ज्यादा समय नहीं है, 1 ही घंटा है केवल, लेकिन 3 बार में करो, घर का माहौल बहुत अलौकिक होता जाएगा। अब ड्रामा को हमें यूज करना है और अपने चित्त को शांत करना है। माताओं को और गहराई से सोचना चाहिए, माताओं को ही नहीं सबको, कि जो आज उसका बच्चा है, सतयुग में वो उसका बच्चा होगा नहीं होगा, पता नहीं 5-10 साल का ही खेल बच्चा है। इसके कारण, एक बच्चे के कारण अपनी इस जन्म जन्म की कमाई को गंवाना नहीं है। चिंतन करो सभी माताएं, नहीं तो न बच्चे में सुधार आएगा और खुद भी बिगड़े हुए रह गए तो बहुत कठिनाई होगी आगे चलकर। संसार का हाल बिगड़ता जा रहा है, मैंने शुरुआत की थी, धर्मराज का पार्ट बस प्रारंभ हो रहा है। इसलिए वो समय आएगा जब बाबा होगा साक्षी, अब तक था साथी पूरी मदद, हम बुलाए दौड़ा चलाता था, अब केवल उनके बुलावे पर आएगा जो उसके बुलावे पर ऊपर जाते रहे हैं, वो भी तो बुलाता है ना रोज, जो उसके बुलावे पर अपना सब कुछ कुर्बान करते रहे हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर कुर्बान रहे हैं, अब उनको मदद मिलेगी, बाकी के लिए बाबा होगा साक्षी। तो उस समय पर हम पहुंचते जा रहे थे जिसे, इसलिए ड्रामा के ज्ञान को फिर से रिवाइज करो जरा, कम से कम 15 पॉइंट बनाई जा सकती हैं ड्रामा की। एक, मैं 4 सुनाऊंगा केवल, नहीं पहले इसी बात को लेकर, हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है, सभी कलेक्टर नहीं बन सकते। एक क्लास में 7 स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट पहले 10 होंगे, मीडियम वाले 25 होंगे, बाकी सब थर्ड क्लास और फेलियर होंगे, आधे 30। इस सत्य को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत बड़ा कंपटीशन है आजकल, तो हर माँ बाप समझते हैं उनके बच्चे भी अच्छे पढ़ें। बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों में वो क्वालिटी भी तो हो, जबरदस्ती तो पढ़ाया नहीं जा सकता। देखो आज एक प्रोफेसर मिलने आए, प्रोफेसर भी, और उन्होंने अपने कई कॉलेजेस बनाए हैं, वो डायरेक्टर भी हैं खुद कॉलेज का और प्रोफेसर भी है। तो कहा, मुझे बहुत टेंशन रहने लगी है, मेरे घुटने दर्द भी करने लगे, मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बच्चे मैं ही पढ़ाऊं। कहा उसका नाम लाल होगा लास्ट में? तो कहा सारे बच्चे मांग करते हैं लाल सर ही पढ़ाने आए। मैंने कहा अगर लाल का हाल बेहाल हो रहा हो तो लाल क्या करेगा? कहा सचमुच मैं अब सोच रहा हूँ ये कॉलेज बंद कर दूं, दुबई चला जाऊं, कुछ और काम करूं। मैंने कहा क्यों? तो सुन लो आपके बच्चों का हाल। कहा मोबाइल पर व्हाट्सएप इतना यूज कर रहे हैं, माताओं को तो पता नहीं क्या भला है व्हाट्सएप। कहा बस वही कर रहे हैं क्लासेस में, बस बैठे बैठे मोबाइल ही सब कुछ चल रहा है। हम क्या पढ़ा रहे हैं? वो जो होशियार अच्छे बच्चे वो तो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, 60 की क्लास है तो 20 तो अच्छा पढ़ रहे हैं, बाकी 40 नहीं पढ़ रहे हैं। और सरकार ने भी नियम बना दिया है, मैंने पहली बार सुना, न तो किसी को मानना है, वो तो बनाया था, लेकिन होमवर्क भी नहीं देना है। मैंने कहा तो मैंने भी नहीं सुना था आज तक, प्रोफेसर बता रहा था जिसका अपना कॉलेज है, हैं? हाँ, अब इनको समस्या ये है, इनके अपना कॉलेज 8000 स्टूडेंट कॉलेज छोटे से हायर एजुकेशन तक, कहा बच्चे पढ़ते नहीं, हमारी फीस काफी कम है स्टूडेंट्स की, केवल 15000 हम लेते हैं। अब जब वो पढ़ते नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो हमारे कॉलेज चलेंगे ही नहीं ना, रिजल्ट ही अच्छे ना हो तो कौन एडमिशन दे कराएगा। कहा हमने पेरेंट्स की मीटिंग की और कहा अपने बच्चों से मोबाइल ले लो, उन्होंने कहा हमारे बस का नहीं है काम, हमने दिया है अब लेना हमारे हाथ में नहीं है, तूफान कर देते हैं बच्चे। देखो यहाँ पहुंची है एजुकेशन, यहाँ पहुंचा है कलयुग, जहाँ इस मोबाइल में जो एक बहुत सुंदर गिफ्ट है हमारे लिए, साइंस के गिफ्ट है। अब से 15 साल पहले जो फोन करने पड़ते थे और 25 साल पहले कितना महंगा था एसटीडी कॉल, जरा सी बात करनी हो कहीं 50 रुपए चाहिए। एक दिन मैंने थोड़ी ज्यादा बात कर ली, 250 रुपए हो गए, 250 रुपए में तो 2 मास मेरा चल जाता है। कितना सस्ता हो गया तो एक अच्छी बात भी हो गई ना, वरदान भी है, लेकिन इसी का मिस यूज अभिशाप है। और बच्चों के लिए खास, वो किसने बताया टीवी पे देख रहे हैं केस सीन दिखा रहे, वो लड़की मोबाइल से बात करती जा रही है, वो जो सीवरेज का गड्ढा उसमें गिर गई, लड़की मोबाइल से बात कर रही, पीछे गाड़ी वाला फों फों कर रहा है, ये सुन ही नहीं रही, सीन दिखाए कई, बात करती जा रही एक माता के ऊपर गिर गई। ये सब लक्षण हैं कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, बिल्कुल तमोप्रधानता की एंड में, इसकी समाप्ति होगी। जब कोई भी चीज विकृति अंत में पहुंच जाती है तो फिर उसकी समाप्ति होती है, कोई भी अच्छी चीज का जब दुरुपयोग होने लगता है तो फिर वो समाप्त होने के कगार पर होता है। तो हम ड्रामा के ज्ञान को यूज करेंगे, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सबकी बुद्धि अपनी, सबके संस्कार अपने, सबके कर्म अपने, सबका मन अपना, सबकी स्थिति अपनी, सबके स्टेटस अपने, भाग्य अपना, इसलिए साक्षी भाव बढ़ाना ही होगा, नहीं तो ऐसा समय आ रहा है जबरदस्ती साक्षी होना पड़ेगा कि जो हो रहा है अब तो यही होगा, कोई चेंज नहीं कर पाएगा इसको। इसलिए जो अच्छा चिंतन करते हैं आप में से गामा की कई पॉइंट्स निकालें, गामा बिल्कुल एक्यूरेट है, जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, गामा पूरी तरह कल्याणकारी है, हम भी इस गामा में एक्टर हैं, हीरो एक्टर्स है, चिंतन भी मिलाएं इनको अच्छी तरह से, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, एक्यूरेट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये साक्षी होना ही है कि जो होगा वो होगा। मैं सोचा करता हूँ कि बाबा ने ये खेल हजारों बार देखा है ना, विनाश का भी, ये उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, मैं अपने बच्चों को लेने आया हूँ, छोड़ो ये खींची शरीर, चलो मेरे साथ अपने घर, यहाँ छोड़ने वाले परेशान हो रहे हैं। तो कहेगा मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ बच्चे, तुम्हारा घर ये है, तुम बहुत दुखी हो गए हो, चलो मेरे साथ। तो जैसे बाबा में सहज भाव है, एक सदा ही ज्ञान का स्वरूप है वो, ज्ञान के सागर और ज्ञान के स्वरूप, वैसे ही हमें भी साक्षी होकर रहने की प्रैक्टिस अब बढ़ानी है। हमारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, हमारे साथ हमारी कामनाओं के विपरीत भी हो सकता है, आपके अपने ग्रस्त जीवन में कई परिस्थितियाँ आ सकती हैं, संबंधों में कई गड़बड़ हो सकती हैं, सब में हल्के रहना ही पड़ेगा। एक परिवार मिलने आया से हमको, कहा भाई दो लड़के थे, मैंने कहा फिर क्या हुआ, थे तो कहा एक की छोटे की तो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, बड़े की शादी हुई, बहू ऐसी आ गई कि हम दोनों को घर से ही निकाल दिया है, तो हम उधर झारखंड में गए थे, वहाँ से निकल के जयपुर में आ गए हैं, लेकिन वो अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, अभी संदेश दिया मैं आ रही हूँ। क्या हम डर भी रहे हैं, अब क्या कहें उसको। मैंने कहा आपको क्या करती है वो आ रही है तो, कहा हमारा बहुत अच्छा बिजनेस था, लड़के को इसने वश कर लिया अपने, और सारी जो धन संपत्ति कमाई होती है वो अपने घर भेजती है, ये है समस्या। तो मैंने कहा तुम क्या करते हो, कि बस हमने जयपुर में आके एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोला है अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए, कहाँ पर वो फिर आ रही है, क्या करें। तो देखो संबंधों में जिनको अपना समझते थे, पहले मनुष्य सोचता है लड़के हो लड़कियां ना हो, लड़के हो गए तो अब ये मुसीबत, अब सोचते लड़कियां ही होती तो अच्छा होता। तो संबंधों में कितना सुख रह गया है कलयुग के अंत में, जिन संबंधों के लिए मनुष्य तरसता है, जिनके लिए क्या क्या पाप कर देता है, जिनके लिए क्या क्या वो करता है, उन संबंधों में दुख ही दुख आ गया। रोज की कहानी है ये, घर घर की कहानी है, कितनी सुनाए। मैं तो एक छोटी सी याद आ गई, आज ही कोई आया था शिविर में आए हुए बेचारे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया हुआ है, मैंने कहा आप ज्ञान को बढ़ाओ और बाबा का आनंद लो तो जीवन सुखी हो जाए, तो ड्रामा को भी सब यूज करेंगे और चित्त को शांत करेंगे। ओम शांति।